परमेष्ठी भगवान अहिंसा परमो धर्म आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज जीवात्मा जब अपने भगवत्व स्वरूप आत्मा को जानने का प्रयत्न करता है तब वह अपने आप को जानते समय मैं भव्य हूं या अभव्य हूं इसकी पहचान अपनी चिंतन धारा के द्वारा जान सकता है कहें या नहीं जान सकता है कहें क्या कहें। जान सकता है मैं भव्य हूं या अभव्य इसको मैं जान सकता हूं पहचान सकता हूं या नहीं। अपने परिणामों के द्वारा स्वाध्याय किए हुए विषयों के आधार से ही अपने आत्म परिणामों को जब वह विचार करना करने लगता है उन परिणामों के आश्रय से अपने आप को भव्य या अभव्य इसका निर्णय कर सकता है या नहीं।
कर सकता है
तो उसका उत्तर क्या है कैसे कर सकता है। कर सकता है तो वह इस प्रकार कर सकता है कि हमें संसार शरीर भोगों से विरक्ति के भाव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं यह हम जानेंगे या ये भी केवल ज्ञानी ही जानेंगे। हम जान सकते हैं संसार शरीर भोगों से विरक्ति के भाव जो होते हैं ये स्वतः आत्मा को अपने में होते हैं और सम्यक दर्शन आदि जब प्राप्त होता है जीव को तब तत्वार्थ का श्रद्धान करता है, तत्व रुचि करता है, और तत्व रुचि के बल पर ही वह सम्यक दर्शन की भूमिका को निर्माण करके सम्यक्त्व को ही प्राप्त करता है। तो ये सम्यक दर्शन आदि प्राप्त होते समय जीव को पता चलता है या नहीं, या अज्ञात अवस्था में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, क्या है? अपने को पता चलता है कि नहीं कि सम्यक दर्शन उत्पन्न हो रहा है? नहीं चलता, क्या कहें? श्रद्धा कौन कर रहा है? स्वयं कर रहा है। तो ज्ञात भाव से करता है क्या अज्ञात भाव से? तो ये ज्ञात भाव के परिणाम हमको पता चलते हैं क्या नहीं? चलते हैं। और अज्ञात भाव से सम्यक दर्शन को होना हो तो निद्रा में भी हो सकता था सम्यक दर्शन, मूर्छा व मूर्छित अवस्था में भी सम्यक दर्शन हो सकता था, परंतु ऐसा क्या संभव है? जागृत अवस्था में ही होगा। जिसका ज्ञानोपयोग जागृत है उसी को सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। जागृत अवस्था आत्मा की अवस्था, यह आत्मा की जागृत अवस्था क्या स्वयं को पता नहीं चलता? अवश्य पता चलता। तो जब सम्यक दर्शन आत्मा प्राप्त कर रहा हो, संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर अपनी रुचि को मोक्ष मार्ग के तरफ, आत्मा के तरफ लगा रहा हो, तो ये भी जागृति के साथ ही होता होगा ना? क्या अज्ञात अवस्था, मूर्छित अवस्था, निद्रा अवस्था में होता है? जागृत अवस्था में होता है। तो ऐसी जागृत अवस्था हमको ये बताती है कि हे भव्य जीवात्मा, तू अभव्य नहीं, तू भव्य। सम्यक दर्शन की उपलब्धि, सम्यक दर्शन की प्राप्ति भव्य जीवात्मा को होता है या अभव्य जीवात्मा को? भव्य जीवात्मा को होता है। तो भव्य जीवात्मा जब सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त करता रहता है, ये सब अनुभव में आते हैं, तो वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा हो तो वह भव्य है क्या अभव्य? वो भव्य है। तो अपने आप के भव्यत्व पने को हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, यह इसका उत्तर हुआ। यदि त्रिकाल में भी हमें अपनी आत्म तत्व के प्रति, धर्म के प्रति, परमार्थ के प्रति, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति, तत्व के प्रति, तत्वार्थ के प्रति रुचि ही जागृत नहीं हो रही हो, और त्रिकाल में कभी होगी ही नहीं, ऐसी परिस्थिति यदि जीव की होती है तो फिर उस जीव को अभव्य है ऐसा हम समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते? समझ सकते हैं, क्योंकि तत्व की रुचि न इतिहास में कभी हुई और न वर्तमान में हो रही है, और भविष्य में भी होने की कोई संभावना हमको दिखती नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है, तो उस जीव को अभव्य समझना चाहिए। क्या बोले?
थोड़े से
अभव्य
हाँ, संख्या जीवों की संख्या के बारे में संबंध नहीं, यहां अपने आप को उन जीवों में से हम भव्य जीव हैं या अभव्य जीव हैं ये बात चल रही है। भव्यों की संख्या अधिक है, अभव्यों की संख्या कम है, ये संख्या वाली बात नहीं चल रही है। बात चल रही है यदि हम अभव्य हो तो भी हम अपने आप को अभव्य ऐसा पहचान सकते हैं, और यदि हमारे पास भव्यत्व हो तो भव्यत्व शक्ति को भी हम पहचान सकते हैं, और यदि पहचान सकते हैं तो प्राप्त भी कर सकते हैं, दोनों बातें हैं। तो अनादिकालीन यह आत्मा संसार, संसार का परिभ्रमण, संसार सुख के प्रति आसक्ति का भाव, उसको त्यागने के भाव जो नहीं होते और बिल्कुल ही नहीं हो रहे हो, अभी तक नहीं हुए, अभी भी नहीं हो रहे हैं, और भविष्य में भी हमको कोई उसके प्रति रुचि जागृत होने की संभावना नहीं लगती हो, तो हम अनुमान कर सकते हैं कि इन परिणामों के कारण से हम अभव्य हैं। और ऐसा भी अनुमान कर सकते हैं कि हमारे लिए संसार शरीर भोगों से विरक्ति के परिणाम जागृत होना शुरू हो गया है, और हमको स्वाध्याय, आत्मचिंतन के प्रति रुचि और आत्मा को चतुर गति से मुक्त बनाने की रुचि आसक्ति बढ़ रही हो, उसके लक्षण फूट रहे हों, तो अपने आप को ऐसे लक्षणों को देखकर ये ऐसा अनुमान से हम पहचान सकते हैं कि निश्चित रूप से हम भव्य हैं। पर शर्त ये है कि संसार अच्छा नहीं लगना चाहिए, और संसार में बार बार ये जो शरीर मिलता है, चारों गति में जाने के बाद नियम से शरीर मिलता है, और शरीर मिलने के उपरांत इसमें इंद्रिय रूपी खिड़कियां खुल जाती हैं, इंद्रिय शरीर में, आंख, नाक, कान, स्पर्श, रस, रसनेन्द्रिय, ये सब शरीर के अंदर द्रव्येंद्रिय रूपी खिड़कियां खुलती हैं, द्रव्येंद्रिय हैं ये सभी, और द्रव्येंद्रिय के पीछे जो भावेंद्रिय है, वह भावेंद्रिय इंद्रियावरणी कर्म का क्षयोपशम और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम, इन दो प्रकार के कर्मों के क्षयोपशम के कारण से भावेंद्रिय प्रकट होती है। जिस जीव को जितनी इंद्रियां मिलती हैं शरीर में, द्रव्येंद्रियां, उन द्रव्येंद्रियों के आधार से जितनी संख्या में मिली हो, किसी जीव को एक ही इंद्रिय मिलती है, एक इंद्रिय कहलाता है, किसी जीव को दो इंद्रियां मिलती हैं तो दो इंद्रिय कहलाता है, किसी को तीन तो तीन इंद्रिय, और किसी को चार इंद्रियां मिले तो वह चौरेंद्रीय जीव, और किसी जीव को पांच इंद्रियां मिले तो वो पंचेंद्रीय जीव, मन नहीं मिला तो असंगी पंचेंद्रीय जीव, मन मिला, पांच इंद्रियां मिली तो संगी पंचेंद्रीय जीव। इस प्रकार ये जीव इंद्रियों को प्राप्त करता है, शरीर को पाए बिना इंद्रियां नहीं मिलती। मरण करके जब यह जीव विग्रह गति में जाता रहता है, उस समय इंद्रियावरणी कर्म का क्षयोपशम तो रहता है, परंतु द्रव्येंद्रियां नहीं रहती, क्योंकि द्रव्येंद्रियां शरीर आश्रित हैं और भावेंद्रिय आत्मा के आश्रित हैं, और विग्रह गति में, विग्रह गति का मतलब क्या, शरीर को छोड़कर पर शरीर को पाने के लिए जब बीच में रहता है, इसको छोड़ चुका है, उसको अभी पाया नहीं बीच का रास्ता, उस समय आत्मा द्रव्येंद्रिय से रहित होता है, उसके लिए एक भी खिड़की नहीं। तो जो आत्मा द्रव्येंद्रिय को धारण नहीं कर रहा है और भावेंद्रिय से युक्त है, उसको कुछ भी महसूस नहीं होगा। स्पर्शनेन्द्रिय हो तो स्पर्श कौन सा है क्या है पता नहीं चलेगा, कर्णेन्द्रिय हो शब्द सुनाई नहीं देंगे, विग्रह गति में क्या शब्द सुनाई देंगे जीव को, नहीं, वो बहरा है। विग्रह गति का जीव बहरा है, जब तक वहां जाकर के कान को नहीं पाएगा तब तक कानों से शब्दों को सुनकर शब्द की अनुभूति, शब्द की पहचान करने की शक्ति को नहीं पाता है। विग्रह गति में थोड़ी सुनाई देता है, विग्रह गति में थोड़ी दिखता है, कुछ नहीं दिखता। यदि दिख जाए और यहां से हम स्वर्ग जा रहे हो तो बीच में क्या क्या लगा, सुमेरु पर्वत, ज्योतिर्लोक सब लगा, उनको देखता देखता हुआ चला जाता ऐसा होता कि नहीं होता? पर कुछ भी देखता नहीं है, जाते समय, पहुंचने के बाद ही और शरीर मिलने के बाद, इंद्रियां खुलने के बाद आंख मिली और आंख मिलने के बाद फिर दिखाई देने लगा। ये इंद्रियां प्राण है, शरीर की इंद्रियों को द्रव्य प्राण कहते हैं और आत्मा के भावेंद्रियों को भाव प्राण कहते हैं। भाव प्राणों के लिए द्रव्य प्राण अगर नहीं मिलते हैं तो भाव प्राण काम नहीं कर सकते, सक्रिय नहीं हो सकते। भाव प्राण तो रहते हैं पर द्रव्य प्राण मिलने के लिए शरीर को पाना पड़ेगा, वो शरीराधीन होते हैं। शरीर को पाने के उपरांत फिर शरीर में जब जीव उत्पन्न होता है ना, शरीर को पाता है, तो सर्वप्रथम वह कितना छोटा होता है? बहुत छोटा। आप किसी अस्पताल में जाकर के देखें, वो कांच में रखे रहते हैं, एक हफ्ते का जीव मनुष्य कैसा होता है, दो हफ्ते के बाद कैसा होता है, चार हफ्ते के बाद कैसा होता है, चार महीने के बाद कितना रहता है, आठ महीने के बाद कितना होता है और नौ महीने पूर्ण होने के बाद किस प्रकार दिखता है, इसको यदि हम देखेंगे, वह शरीर एक राई के दाने के बराबर होता है, मनुष्य शरीर राई का दाना इतना छोटा होता है। उसमें आत्मा आ चुका है, राई के दाने के बराबर के उस छोटे से शरीर में आत्मा आ चुका है, पर्याप्तियों को ग्रहण कर चुका है, यानी शरीर बनाने लायक जो मटेरियल चाहिए उसने आते ही अंतर मुहूर्त के अंदर सब कुछ इकट्ठा कर लिया। जो ही गर्भ में जीव आता है त्यों ही सब कुछ इकट्ठा कर लेता है और अंतर मुहूर्त काल लगता है इसके लिए। अंतर मुहूर्त काल में वह जीव सभी पर्याप्तियों को पूर्ण करके वह पर्याप्तक हो जाता है, निर्वृत्ति अपर्याप्तक से पर्याप्तक अवस्था को प्राप्त होता है। जब तक वह पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं करता तब तक उसे निर्वृत्ति अपर्याप्तक दशा में रहने वाला जीव कहते हैं। निर्वृत्ति अपर्याप्तक दशा में रहने वाला जीव, और जब वह पर्याप्ति को, मनुष्य को कितनी पर्याप्तियां आवश्यक हैं, छह पर्याप्तियां, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, ऐसे छह पर्याप्तियां हैं। इन छह पर्याप्तियों में से प्रथम के दो पर्याप्तियों को जब पूर्ण कर लेता है तब वह पर्याप्तक कहलाता है। छों पर्याप्तियों को पूर्ण करने की कोई जरूरत नहीं, पहले के दो पर्याप्तियों को भी वह पूर्ण कर लेता है तो वह पर्याप्तक नाम पा लेता है, और शेष पर्याप्तियां अपर्याप्त अवस्था में हैं, पूर्ण नहीं हुई है। तो दो पर्याप्ति कौन कौन? पहले के आहार पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति, दो पर्याप्ति आहार शरीर को, आहार पर्याप्ति को और शरीर पर्याप्ति को यदि वह पूर्ण कर लिया तो पर्याप्त कहलाया, और इन्हीं दो पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं किया है, अपूर्ण दशा में है तो उसको लब्धिया पर्याप्तक नहीं, निर्वृत्ति अपर्याप्तक कहते हैं। हाँ, नियम से पर्याप्तियों को जो पूर्ण करता है वह जीव निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में रहता है, और जिनको पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती वो अपर्याप्तक जीव कहलाता है, और वह पूर्व भव से ही अपर्याप्तक नाम कर्म को बांध करके आता है और अपर्याप्तक अवस्था में नियम से मरता है, इसलिए उसकी अपर्याप्तक अवस्था के काल को ये पर्याप्तक जीव आया दौड़ रहा है। उसके अपर्याप्तक अवस्था के काल को कौन सा जीव? लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य। बहुत अच्छी बात सुना रहे हैं, ध्यान रखिए, मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। गर्भज मनुष्य और समूर्छन मनुष्य। गर्भज मनुष्य का जन्म गर्भ से होता है और समूर्छन मनुष्य का जन्म गर्भ से नहीं होता, वह मनुष्य के मलमूत्र में पैदा होता है। मनुष्य के मलमूत्र में भी मनुष्य होते हैं, आपने सुना नहीं होगा, पहली बार सुन रहे होंगे। मनुष्य का जो मूत्र है, मल है, पसीना है, इन स्थानों में मनुष्य पैदा होते हैं। वो कौन से मनुष्य? गर्भज मनुष्य नहीं, समूर्छन मनुष्य। ये समूर्छन मनुष्य नियम से अपर्याप्तक मनुष्य कहलाते हैं, अर्थात ये जहां से भी आ रहे हों, यहां जन्म लेने के लिए मलमूत्र में, वह आने वाला आत्मा मनुष्य गति की ओर ही आ रहा है, लेकिन मनुष्य के मलमूत्र में पैदा होने को आ रहा है और वो समूर्छन होकर जन्म लेने को आ रहा है। समूर्छन जन्म से उसको जन्म लेना है, और आते समय कौन से नाम कर्म को बंद करके आ रहा है? पर्याप्तक नहीं, अपर्याप्तक नाम कर्म को बांध करके आ रहा। तो अपर्याप्तक नाम कर्म से जो आता है जीव, उसको लब्धि अपर्याप्तक कहते हैं। गर्भ से जीने वाले, जन्म लेने वाले जीव को अपर्याप्तक जीव नहीं कहते, उसको लब्धि अपर्याप्तक भी नहीं कहते, उसको निर्वृत्ति अपर्याप्तक कहते। किसको? जो गर्भ से जन्म ले रहा है और नियम से पर्याप्तियों को पूर्ण करके जन्म तो होता ही है उसका। ऐसा भी नहीं समझना तो 9 महीने तक रह करके वो जीवित जन्म लेता है, उसी को पर्याप्तक कहते हैं, ऐसा नहीं समझना। आते ही गर्भ में उसके दो पर्याप्तियां पूर्ण अंतर्मुहूर्त काल में हो सकती है, नहीं होती है, नियम से होती है, हो सकती नहीं, नियम से होती है। किंतु दो पर्याप्तियों को जब तक वह पूर्ण नहीं करता तब तक उसको निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था कहते हैं। निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में रहने वाला जीव नियम से पर्याप्तियों को पूर्ण करता है और 6 पर्याप्तियों को पूर्ण करता है, छों पर्याप्तियों को पूर्ण करके वह अपने शरीर को विकसित करने में लग जाता है। जब छों पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं तब भी इस जीव का शरीर कितना छोटा रहता है इसकी कल्पना करें तो गर्भ जन्म लेने वाला गर्भज मनुष्य बन करके उत्पन्न होने वाला यह जीव उसका शरीर राई के दाने के बराबर छोटा होता है और उसके छों पर्याप्तियां वहां पूर्ण हो चुकी हैं। आहार पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति दोनों पूर्ण हो चुकी हैं और फिर यह पर्याप्ति शरीर पर्याप्ति जो पूर्ण हो चुकी है वह राई के दाने के बराबर है और यही राई के दाने के बराबर का शरीर विकसित होता हुआ अपने द्रव्य प्राणों को पूर्ण रूप से धारण करना प्रारंभ कर देता है। यानी उस राई के दाने के बराबर के उस मनुष्य के शरीर में आंखें खुलने लगती हैं, आंखों की रचना होने लगती है। यानी रचना ये विकसित विकास होने का काल है। पर्याप्तियां तो पूर्ण हो गई हैं, पर्याप्ति पूर्ण हो गई है लेकिन विकास के लिए समय लगता है, ऐसा जैन साइंस कहता है। जिनेंद्र भगवान का, केवली भगवान का यह साइंस, ये बायोलॉजी बहुत सूक्ष्म है और इतना सूक्ष्म संशोधन विज्ञान ने अभी तक नहीं किया है। किया है तो ऊपरी ऊपरी किया है, वो राई के दाने के बराबर से लेकर वह 9 महीने तक का क्या क्या प्रक्रिया होती है इसको तो कहा है, किंतु इसके पहले जीव की परिस्थिति क्या होती है, उसकी पर्याप्तियां कितनी होती है, अपर्याप्ति क्या है, इस संबंध में विज्ञान ने अभी तक नहीं समझाया है। इसलिए विज्ञान अधूरा है और केवली भगवंत का ज्ञान, उनका विज्ञान पूरा है। केवली भगवान राई के दाने के बराबर से लेकर वह संपूर्ण मनुष्य शरीर जब पूर्ण होता है तब तक का भी वर्णन करता और उसके पहले का भी वर्णन करता। यह भी वर्णन करता है कि वह जीव कहां से आया, कहां कहां से आ सकता है समूर्छन मनुष्य बनने के लिए और कहां कहां से नहीं आ सकता, इसको भी वर्णन करता है। यानी आत्मा को भी बताता है कि यह आत्मा मनुष्य पर्याय में किस भव से, किस गति से आ सकता है, किस पर्याय से आ सकता है और जन्म ले सकता है। केवली भगवान के द्वारा बताए गए तत्व तो इसी मायने में बहुत गहरे होते और वो अपने आप में पूर्ण होते हैं, संपूर्ण होते हैं। इन तत्वों का अध्ययन करने से आत्मा का ज्ञान बढ़ता है। ये सूक्ष्म जीव तत्व ही है। जब हम जीव तत्व का वर्णन सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए बैठेंगे तो ये सब कुछ आएगा। ये विषय गोमट सार जीव कांड इत्यादि ग्रंथों में आप पढ़ सकते हैं, षटखंड आगम आदि ग्रंथों में भी इसका वर्णन है। इस वर्णन को पढ़ने से, जीव तत्व के सूक्ष्मतम विषयों को जानने से पता लगता है कि ये तत्व विज्ञान से बहुत आगे पहुंचे हुए तत्व हैं। इन्हीं तत्वों को यदि विज्ञानियों के सामने, भौतिक विज्ञानियों के सामने हम यदि प्रस्तुत करेंगे तो चकित हो जाएंगे। और एकमात्र यह केवली भगवान का श्रुत ही विज्ञान को चकित कर सकता है। विज्ञान थोड़ा बहुत भौतिक रूप से पुद्गल परमाणुओं का खोजबीन कर लेता है और उसको सबसे बड़ा संशोधन मानता है, लेकिन ये कोई सबसे बड़ा संशोधन नहीं बल्कि केवल ज्ञानियों ने कहने के उपरांत का यह संशोधन है। केवल ज्ञानियों ने उन विज्ञानियों से पहले भी व्याख्यान किया था। ये सब संशोधन जो विज्ञान का होता जा रहा है इसका मूल जैन तत्व ही है, जीव तत्व। और जीव तत्व के जो ग्रंथ मिलते हैं वो ही ग्रंथ विज्ञानियों के लिए सहारे, इसी के आधार से उन्होंने खोजा। परंतु जिसको वो खोज नहीं सकते, पीछे जा नहीं सकते, आत्मा को दिखा नहीं सकते, आत्मा को पकड़ नहीं सकते, ग्रहण नहीं कर सकते, ऐसे तत्वों को विज्ञान कभी खोज नहीं सकता। क्योंकि आत्मा को कैसे पकड़े और आत्मा को कैसे दिखाएं, ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि आत्मा को ग्रहण करना, पकड़ना और उसको रोकने के लिए कोई ऐसा मशीन, ऐसा कोई यंत्र दुनिया में हम बना ही नहीं सकते। और ऐसा यंत्र जब तक पैदा नहीं होगा, तब तक केवल ज्ञानियों ने जो ये कहा है कि शरीर के पहले भी आत्मा था, वो कहां से आया, कैसे आया, उस विषय को खोजना बहुत कठिन। यंत्र पैदा हो जाए कि आत्मा, कर्मधारी आत्मा को, आठों कर्मों से युक्त आत्मा को पकड़ने वाला कोई यंत्र आ जाए तो फिर उस यंत्र के माध्यम से हम आत्मा की पूर्व भव की पहचान को भी कर सकते हैं। क्योंकि आने वाली आत्मा को हम विग्रह गति में ही कैच कर सकते हैं, रुको जरा, बाद में जाना शरीर धारण करने के लिए, हमको देखना है कि तुम कौन हो, कहां से आए। उससे पूछोगे, उस आत्मा को पूछोगे, तुम कहां से आए हो, बता नहीं सकेगा। वो मौन है, मूक है, बताने के लिए शरीर चाहिए। शरीर को पाए बिना बोलना संभव नहीं, बताना संभव नहीं। उसको पता है, उसको ज्ञात है, मैं कहां से आया। और विग्रह गति में रोक करके हम यंत्र से पूछ रहे हैं उसे कि तुम कहां से आए, कहां जा रहे, तो बता नहीं सकेगा वो। और वही नहीं बताएगा तो फिर हम खोजेंगे कैसे, फिर पीछे का कैसे जानकारी लेंगे। तो छोड़ो उसको, यंत्र से बाहर कर दो। तो बाहर करने से आ गया और शरीर पा लिया, बड़ा हो गया, गर्भ में आ गया, राई के दाने के बराबर शरीर को बना लिया, पर्याप्तियों को पूर्ण करके। उससे पूछो कि अब तो शरीर मिल गया, अब तो बताओ नहीं बता सकेगा। ठहरो, सात दिन बाद पूछो, नहीं बता सकेगा। एक महीने बाद पूछो, नहीं बता सकेगा। नौ माह बाद पूछो, नहीं बता सकेगा। बोलने की जो क्षमता आती है उसके लिए कितने साल लगते हैं, कितने वर्ष लगते हैं? ढाई वर्ष। ढाई वर्ष से वो, ढाई वर्ष के बाद वो भी थोड़ा थोड़ा तोतली बोली बोलता है, आप उसकी बोली को समझ नहीं पाते। तो आत्मा को बोलने के लिए इतना समय लगता है, ढाई वर्ष लगे। हम तो विग्रह गति में ही रोक करके सब कुछ जानकारी लेना चाहते थे उससे, वहां तो ले ही नहीं सकते। परंतु ये बड़ा बना, जन्म ले लिया, गर्भ से बाहर आया, ढाई साल का बड़ा हुआ, फिर भी शुद्ध उच्चारण के साथ वो बोल नहीं सक रहा है। अब उसके बोलने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा भी तो चाहिए, भाषा भी तो एक माध्यम है। आप जिस भाषा में पूछ रहे हैं उसी भाषा से तो उत्तर देना पड़ेगा, तब आपको भी समझ में आएगा। आप इंग्लिश में पूछ रहे हैं और वो पूर्व भव में हिंदी समझता हुआ आया है यहां, तो इंग्लिश तो जानता ही नहीं वो, और जन्म लेने के बाद एकाएक इंग्लिश कैसे बोलेगा। तो ढाई साल के बाद भी बोलेगा, लेकिन हां हूं से बोलेगा वो केवल। भूख लगी तो रोएगा, मुझे भोजन दो, ये हिंदी भाषा नहीं आती उसको, उसको तो इंग्लिश भाषा का संस्कार था, लेकिन उसको भी व्यक्त करने की कोई तरीका, माध्यम, क्षमता नहीं है, और वह बोलता है। कितने समय बाद बोलता है, जब वो भाषा सीखेगा, एक एक शब्द से एक एक वाक्य से परिचित होगा, ये तुम्हारी माता है, ये पिता है, इनको जो कुछ भी तुम चाहते हो इनके सामने व्यक्त करो वो मिलेगा, इस प्रकार हिंदी भाषा या मराठी भाषा या कन्नड़ भाषा जिस देश में वह जन्म लेता है जीव, उस भाषा के अधीन होकर के अपने विचारों को व्यक्त करता है। और भाषा नहीं है तो व्यक्त करने का कोई माध्यम ही नहीं है। ऐसा भी एक मनुष्य मिला था समुद्र में, पता नहीं कहां से आया था वो, उसको कोई भाषा नहीं आती थी, और जहाज से मछलियों को पकड़ने के लिए जाने वाले लोगों को दिखाओ, मनुष्य 18 साल का बालक था और वह समुद्र में तैरता था, समुद्र के सैकड़ों मील अंदर तैरता था वो, और सैकड़ों मील दूर से ही वह तट पर आता था खाना आदि ढूंढने के लिए और खाने के लिए, जीवन बचाने के लिए। यह सत्य घटना है। सैकड़ों मील अंदर उस व्यक्ति को पकड़ लिया और वह इतनी तेजी से तैरता था जैसे मछली तैरता हो, प्रैक्टिस हो गया था उसको, इतनी तेजी से कि जहाज से भी लोग पकड़ नहीं पा रहे थे। उन्होंने बहुत समय तक देखा, उसको पकड़ने की चेष्टा की, लेकिन जल में तो पकड़ में नहीं आया, यहां डूबा तो दूर उठ जाता था। फिर लोगों ने सोचा कि यह व्यक्ति कहीं समुद्र के तट पर खाना खाने के लिए तो नहीं आता होगा, तो उन्होंने समुद्र के तट पर जगह जगह पर खाने की सामग्री रखा और उस खाने की सामग्री से थोड़ा दूर हट करके रात को छिप करके बैठ गए देखने हेतु कि आता है या नहीं, और कई जगह रखा गया और कई जगह लोग बैठ गए, और वह लड़का भोजन करने के लिए समुद्र के तट पर आया तो वहां के भोजन को ढूंढने के लिए जब प्रयत्न कर रहा था, लेने जा रहा था, तो लोगों ने आकर के उसको घेर लिया, पकड़ लिया। तो ये पेपर में छप करके आया कि मत्स्य मानव समुद्र में अज्ञात एक मनुष्य उपलब्ध हुआ है, और वह बालक 18 साल का, वो बोलने का प्रयत्न करते हैं, वो उनकी बोली को नहीं समझ रहा है, और वह जल के बिना रह नहीं सकता था, वो कहने लगा मुझे जल में छोड़ दो, संकेत से बताने लगा मुझे जल के अंदर छोड़ के आओ, मुझे वहीं छोड़ दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा संकेत था उसका। तो जैसे वो नहीं छोड़ते हैं तो वह मूर्छित होने लगा, तड़पने लगा, तो लोगों ने सोचा कि ये जल के बिना तो टिकेगा नहीं, मर जाएगा, और इसको जल में ही रखना चाहिए। तो गाड़ी से जल, समुद्र का जल लेकर के एक गड्ढा किया और उस जल में छोड़ दिया। तो कई दिनों तक उस गड्ढे में उस मनुष्य को रखा जाता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग वहां आए उस मनुष्य को देखने के लिए कि यह कैसा मनुष्य, कहां से आया, इसकी भाषा क्या, इसका निवास स्थान कहां होगा, ऐसा भी कोई अज्ञात द्वीप है क्या जिसमें इस प्रकार के मत्स्य मानव रहते हैं जो सैकड़ों मील तैर सकते हैं और अपने प्राणों को जल के बिना बचा नहीं सकते, ऐसा मत्स्य मानव कहीं किसी द्वीप में है क्या, ये शंकाएं होने लगी विज्ञानियों के मन में। तो उनकी खोजबीन करने के लिए उस मनुष्य को ऐसा ही रखा गया, और उसके बाद क्या किया गया पेपर में नहीं आया, और मैं कैसे बताऊं। अगर केवल ज्ञान होता तो सब कुछ बताता उसके बाद क्या क्या किया गया, अवधि ज्ञान भी होता तो हम बता देते, पर यहां तक विषय पेपर में आया था, उसके बाद उस मनुष्य के बारे में क्या क्या खोजबीन हुए, इसको पुनः पेपर में नहीं दिया गया, सुनाई नहीं दिया कि ये बाद में भी पेपर में आया। तो देखिए ये जीव तत्व है, जीव तत्व का चिंतन करने के लिए हमें इन द्रव्याण योग के ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। गोमर्सार जीवकांड द्रव्याण योग का ग्रंथ है, कर्णाण योग का नहीं। गोमर्सार जीवकांड जीव तत्व का ग्रंथ है, इसलिए द्रव्याण योग का ग्रंथ है। तो इसके अंदर जीव के संबंध में हम क्या क्या जानकारी लेते हैं, तो ये जानकारी लेते हैं गति, ये जीव चार गति में रहता है, गति मुक्त होने के बाद मोक्ष में रहता है, लेकिन रहता जीव का विनाश नहीं, जीव अनादि से था, अनादि से है और अनादि काल तक रहेगा ही, जीव का विनाश नहीं होता। जैसे शरीर का विनाश होता है, शरीर संगठित भी होता है, मनुष्य आकार बनता है, जलाने पर राख राख होता है, आकार बदल गया, आकार प्रकार का विनाश हुआ, परंतु जीव नामक द्रव्य का विनाश नहीं होता। वो शाश्वती आत्मा है, वह शाश्वती आत्मा यदि भव्य हो तो वह भगवान आत्मा। कौन आत्मा? भगवान, यानी उसी के भीतर भगवान की शक्ति, भगवान बनने की शक्ति है, इसलिए भगवान आत्मा का, भगवान का रूप है, अंदर छिपा हुआ है। जो बीज बोने पर उग सकता है, उस बीज में वृक्ष है, उस बीज में वृक्ष है, ये कहने से क्या हानि है? तो वृक्ष है क्यों, तो फोड़ के देख लो, वृक्ष निकलता है क्या? अभी वृक्ष नहीं है, वृक्ष बनने की शक्ति है, इसलिए उसको वृक्ष है, ये उपचार से कहा जाता है। वृक्ष है कहना गलत नहीं, उपचार से है, वृक्ष बनने की शक्ति है इसलिए वृक्ष है कहते हैं, ये नए का आलंबन है। उसी प्रकार संसारी आत्मा के भीतर ही भगवान है, यह कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि भगवान बनने की शक्ति उसी आत्मा के भीतर है, भव्यत्व शक्ति के कारण से। भव्यत्व शक्ति एक वह शक्ति है, जो वह शक्ति भगवान को उगल सकता है। हाँ, भगवान भगवत शक्ति को प्रकट कर सकता है, भगवान को जन्म दे सकता है, अपने आप को भगवत के, भगवान के रूप में पैदा कर सकता है, स्वयं अरहंत बन सकता है। वही द्रव्य पहले संसारी था, अब अरहंत है, उसके बाद सिद्ध है, और सिद्ध के बाद भी है, पहले भी था, अब भी है, सिद्ध भगवान के रूप में। इसका विनाश होता है? नहीं होता। आत्मा का विनाश नहीं, मोक्ष जाने के बाद भी विनाश नहीं, संसार में रहते हुए भी विनाश उसका नहीं होता। हम अजर अमर हैं, ये समझना जरूरी है, इसलिए मरते समय डरने की जरूरत नहीं, धैर्य रखना चाहिए। आत्मा अजर अमर है, कुछ नहीं होता उसको, मरता ही नहीं है, मरण नहीं है, जन्म मरण उसको नहीं है, कहां है निश्चय से जन्म मरण? जन्म मरण तो व्यवहार से है, मरण उसका नाम, एक शरीर को छोड़ना मरण है, शरीर को छोड़ना मरण है, आत्मा का नाश मरण है क्या? नहीं, आत्मा का नाश नहीं होता, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। और शरीर से वह आत्मा अलग हो रहा है तो हो रहा है, अनादिकाल से कई बार अलग हुआ है और भविष्य में भी जब तक संसार में रहेगा तब तक अलग होता ही रहेगा। और इससे क्या डरना, अनादिकाल से हम अलग होते होते ये आए हैं शरीर से, तो अब भी एक बार अलग हो रहे हैं तो इससे क्या डरना, ये हमारा मरण नहीं, हमारा केवल वियोग है। ये तो मरण शरीर का है, ये तो नाश शरीर का है। मरण का अर्थ क्या? मरण यानी क्या? मृत्यु, मृत्यु यानी क्या? शरीर छोड़ना। और शरीर का छोड़ना आयु कर्म समाप्त हुए बिना होता नहीं, इसलिए आयु कर्म की समाप्ति को मरण कहते हैं। आयु क्षयेन मरणम्, आयु का क्षय हो जाना मरण है। और आयु का क्षय, आयु कर्म क्या है? आयु कर्म भी पुद्गल है। शरीर क्या है? शरीर भी पुद्गल है, शरीर का भी नाश हो सकता है। और आयु कर्म को भी हमें नाश करना ही है, और हो भी रहा है वो, थोड़ा 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 करके मनुष्य आयु समाप्त हो रहा है, मनुष्य आयु का आयु कर्म नाश होता जा रहा है, निर्जरित होता जा रहा है, तो एक दिन खत्म होने वाला ही है। आयु कर्म से वियोग को प्राप्त करना मरण, मृत्यु। और जब आयु कर्म से आत्मा अलग हो जाता है तब शरीर से क्या जुड़ा रहता है? नहीं, आयु कर्म खत्म हो गया तो शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। इस शरीर में आत्मा कब तक रहता है? जब तक आयु कर्म साथ दे रहा है, जब तक वह आयु कर्म को भोग रहा है तब तक जीवित रहता है। और जब आयु कर्म समाप्त होता है तो शरीर को भी नियम से छोड़ना पड़ता है। जब शरीर को छोड़ना पड़ता है तो मरण करना पड़ता है, इसी को मरण कहते हैं। मरण का अर्थ होता है आयु कर्म से और शरीर से वियोग दशा को प्राप्त होना, वियोग अवस्था को प्राप्त होना, इसी का नाम मरण है। यह मरण बार बार होना अच्छा क्या बुरा है? बुरा है। मरण को बुरा समझते हो ना, और जन्म को क्या समझते फिर? ये जन्म तो अच्छा है, मरण ये बुरा है, क्योंकि उधर दुख होता है मरते समय, जन्म लेते समय कुछ दुख नहीं होता। कई लोगों की समझ ये है कि जन्म के समय दुख नहीं होता है? दुख भी होता है। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करता है, वहां की पर्याप्तियों को ग्रहण करता है, उस समय तो सुख रहता है, दुख नहीं रहता। परंतु शरीर को विकसित करके जब वह जन्म लेता रहता है, कितनी पीड़ा होती है। यह मनुष्य तो स्वयं भी पीड़ा के साथ जन्म लेता है और जन्म लेने वाली माता को भी पीड़ा देकर के आता है। स्वयं भी पीड़ित होता है।